कथा का शीर्षक है शत्रु की पहचान। सूफी संतों में महिला सूफी संत राविया का नाम बहुत प्रसिद्ध है। एक बार वह कहीं जा रही थी, मार्ग जंगल में होकर था। जब वह उस जंगल में पहुंची तो उन्होंने देखा कि रास्ते के साथ ही एक सुंदर तालाब है। तालाब के चारों ओर हरियाली है। वहीं उन्होंने पंछियों के चहचहाने का स्वर भी सुना। उनकी इच्छा हुई कि तालाब के किनारे हरियाली में बैठकर पंछियों का कलरव सुने और वह वहां बैठ गई। राविया के बैठते ही कई पंछी आकर उनके सिर और कंधों पर बैठ गए। जिन्हें सिर और कंधों पर जगह नहीं मिली वे उनके पैरों के आसपास फुदकने लगे। राविया उन सब पर स्नेह से हाथ फेरने लगी। हाथ फेरते फेरते ही कहने लगी, अभी तुमने दाने तो नहीं चुगे होंगे, मैं तुम्हें दाने खिलाती हूं। यह कहकर उन्होंने अपने झोले में से अनाज निकाला और प्रेम से पंछियों को खिलाना आरंभ कर दिया। इस काम में वो पूरी तरह पंछियों के साथ खो गई। उन्हें उधर इधर का कुछ भी ध्यान नहीं रहा। संयोग बस पास के गांव के दो चार लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने जो यह अनोखा दृश्य देखा तो हैरान रह गए। गांव में पहुंचे तो अन्य लोगों से भी इस बात की चर्चा की। राविया के इस अद्भुत पंछी प्रेम का यह समाचार पास के गांव में रहने वाले एक फकीर ने भी सुना। फकीर का नाम था हसन बसरी। वो सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा, क्यों न मैं राविया के पास जाकर इस रहस्य को जान लूं। अतः वह उस स्थान के लिए चल पड़े जहां राविया पंछियों के प्रेम में उनके साथ आनंद मना रही थी। हसन बसरी जैसे ही राविया के पास पहुंचे, सबके सब पक्षी एक एक कर वहां से उड़ गए। हसन बसरी ने कहा, राविया, मैं बड़ी उत्कट इच्छा से तुम्हारे पास इस अद्भुत दृश्य का आनंद लेने आया था, ताकि वे पंछी मेरे जिस्म पर भी खेले। लगता है शायद तुम्हें मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा। राविया ने फकीर से पूछा, पहले ये बताओ कि तुम खाते क्या हो। बसरी ने उत्तर दिया, मैं गांव में रहता हूं, अतः वहां बकरे आदि का मांस तो नहीं खा सकता। हां, पंछियों का मांस खा लेता हूं। फकीर की बात पूरी होने से पहले ही राविया बोल उठी, बस बस आप आगे न बोलो। देखो, पंछी वे बेजुबान जरूर हैं, मगर वे तुम्हारी आहट को पहचानते हैं। खुद की दुनिया का हर जानदार प्राणी अपने को हानि पहुंचाने वाले को बहुत अच्छी तरह जानता है। तुम्हारे आने की आहट सुनकर ही सब पंछी उड़ उड़कर अपने अपने घोंसले में जा बैठे हैं। तुम्हारा आना मेरे लिए तो अशुभ नहीं था, अतः मुझे गवारा भी था। पर पंछियों को तुम्हारा यहां आना गवारा नहीं था, क्योंकि वे तुम्हारी करतूत से डरते भी हैं और तुम जैसों से घृणा भी करते हैं। राविया की बात सुनकर बसरी शर्मिंदा हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पंछी जो भी मूक प्राणी हैं, जो बोल नहीं सकते, परंतु वो भी मनुष्यों की औरों की आड़ से ये पहचान लेते हैं कि मेरे ये शुभ चिंतक हैं या अशुभ चिंतक हैं, मेरे से प्रेम रखने वाले हैं या बैर रखने वाले हैं, अब मेरे या भलाई के लिए सोचते हैं या मेरे हानि के लिए सोचते हैं। इस सब चीजों का प्रभाव उन्हें वाइब्रेशन पहुंचता है, आहट पहुंचती है, तभी वो उसके समीप और उससे दूर भागना चाहते हैं। तो कहने का मतलब, ये संसार एक ऐसा इको एक गुफा तरह है। हम जैसा जिसके प्रति भी अपने मन में भाव रखते हैं, जो चीज भी उनके लिए हम मन में पैदा करते हैं और वो चीज हमारे ऊपर परावर्तित होकर के आता है। तो अगर हम सदा उनकी भलाई कल्याण के लिए और हिंसा की चीजों को परित्याग करके अहिंसक वृत्ति वाले होते तो साथ ही देखो एक राविया के साथ उनका उतना प्रेम, और वो बसरी आए तो उनके लिए वो इतना भय और डर से सब भाग जाने का मतलब क्या है कि हम सब जैसा उनके लिए सोचते हैं वो हमारे को भी वैसा ही दृष्टिकोण से, भाव से, भावना से देखते हैं। इसीलिए हमें सारे संसार के कल्याण की कामना रखने वाले और संपूर्ण अहिंसक बन के हम रहते हैं तो हमारे लिए सारा प्राणी, यहां तक कि कहा जाता है कि वो प्राणी भी अपनी हिंसालु प्रवृत्ति को भूल जाते हैं, यहां तक कि बड़े बड़े सिंह जो बाघ आदि भी, एक तपस्वी अहिंसक साधु महात्माओं के समय बैठे रहते और उनके बॉडी से टच करके भी रहते, उनको उनसे कोई भय और त्रास की बात नहीं आती, न उनके मन में उनके लिए हिंसा की भावना भी आती है। तो ये कितना नेचुरल स्वभाव है मनुष्यों का कि संपूर्ण अहिंसा ही उसके लिए सुखद की जीवन शैली है, जिससे वो स्वयं भी सुखी रह सकता है, उससे सारा प्राणी भी सुख और आनंद की अनुभूति करते हैं। यही इसका कथा सार वस्तु है। ओम शांति।